समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार वैष्णवी। नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड वैष्णवी। बोथ ऑफ अस, वी आर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज फॉर यू। आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड डिस्कसिंग अबाउट बेसिकली टू टॉपिक्स। We have reports, capsules and attributes and our very own one very special tribute to very prominent ghazal singer today. So listeners, stay tuned because for over next 30 minutes we have a lot of interesting stuff which we have lined up for you. We are beginning with the news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा, इस मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड या समझौता नहीं होगा। क्वालालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता की।
इंडिया एंड मलेशिया एक्सचेंज सेवरल एमओयूज टू बूस्ट कोऑपरेशन इन डाइवर्स सेक्टर्स कवरिंग सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ एंड मेडिसिन एंड एजुकेशन।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता कृषि और किसानों के हितों की पूर्ण रक्षा करता है। प्रमुख कृषि उत्पाद समझौते से बाहर होने का आश्वासन दिया।
होम मिनिस्टर अमित शाह होल्ड्स मीटिंग्स इन रायपुर ऑन सिक्योरिटी सिचुएशन एंड प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़।
बांग्लादेश के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र सेन का दिनाजपुर जेल में निधन, वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा हुई।
So this is our segment Dateline India and today let's tell you about Prime Minister's visit to Malaysia and the India AI Impact Summit 2026 and let's begin with the Prime Minister's visit to Malaysia, Vaishnavi. So Prime Minister Narendra Modi has reiterated India's firm stand on terrorism, asserting that there can be no double standards and compromise on the issue. Mr. Modi made the remarks in a joint press meeting after wide-ranging talks with his Malaysian counterpart Anwar Ibrahim in Kuala Lumpur today.
वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज।
मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट इंडिया एंड मलेशिया विल एक्सपैंड कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस।
सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरिटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और मलेशिया के बीच एक विशेष संबंध है। उन्होंने मजबूत जनसंबंधों और मलेशिया में प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों देश आसियान के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।
हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आसियान भारत व्यापार समझौते आईटीका की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहनिर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेनिट ऑफ मलेशिया के बीच के समझौता ज्ञापन शामिल है।
सो लेटर इन द डे Prime Minister Modi interacted with CEOs and business leaders to further boost trade, investment and economic linkages between the two countries. So, Phison Electronics Corporation's founder and CEO Pua Khein Seng also took part in the meeting. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report. Listen in.
Summarizing the official visit of the PM, Secretaryist P. Kumaran said, semiconductors remain a key area of cooperation. He said that the Malaysia-India Digital Council has been formed to advance engagement in the semiconductor ecosystem as well as digital public infrastructure, e-governance, cybersecurity, artificial intelligence, fintech and payment linkages.
Exchange of notes on cooperation in the area of semiconductors, health and medicine, security and technical and vocational education. In addition, the MOU between Malaysia's Anti-Corruption Commission and India's Central Bureau of Investigation, CBI, on combating and preventing corruption was signed. We also had an MOU on cooperation in the field of disaster management, a memorandum of cooperation between Employees State Insurance Corporation, ESIC, in India, and Perkeso in Malaysia on social security, and we also had an agreement on audiovisual cooperation, all of which were exchanged.
P. Kumaran said, India's design strengths and Malaysia's long experience in manufacturing, assembly, testing and packaging can complement each other. Mr. Kumaran also said that counter-terrorism cooperation between the two countries covers transnational crimes, including human trafficking and violent extremism, and is being addressed through an ongoing national security dialogue mechanism. Prime Minister Modi also met persons of Indian origin and veterans of the Indian National Army. Durgesh Bhadauria for Akashvani News, Kuala Lumpur.
Exchange of notes on cooperation in the area of semiconductors, health and medicine, security and technical and vocational education. In addition, the MOU between Malaysia's Anti-Corruption Commission and India's Central Bureau of Investigation, CBI, on combating and preventing corruption was signed. We also had an MOU on cooperation in the field of disaster management, a memorandum of cooperation between Employees State Insurance Corporation, ESIC, in India, and Perkeso in Malaysia on social security, and we also had an agreement on audiovisual cooperation, all of which were exchanged.
So the Prime Minister reached Malaysia yesterday on a two-day visit. Mr. Modi has since left for Delhi after concluding his visit. Now, we told you in the beginning as well, we have two topics. Now let's proceed. The India AI Impact Summit 2026, scheduled to be held in New Delhi from 16th to 20th of February. It is anticipated to be the largest of the four global AI summits hosted till date, reflecting the growing international momentum around responsible, inclusive and impact-driven artificial intelligence. So, Vaishnavi, the summit will prioritize the translation of vision into execution now, with a clear focus on outcomes which matter on the ground. And well, this will be the first global AI summit to be hosted in the global south, and over 100 countries are engaging through the seven chakra or working groups, reflecting broad global participation in shaping responsible and inclusive AI. And the summit is also anchored in three sutras, which are people, planet, progress, which define the core principles for global cooperation on AI.
भारत अपने विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण पर है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक प्रमुख सहायक के रूप में उभर रहा है। AI भारत के लिए तकनीक के लोकतंत्रीकरण को आगे बढ़ाने वाला एक रणनीतिक साधन है, जो बड़े पैमाने पर पहुंच, समावेशन और समानता सुनिश्चित करता है। ये समिट एक प्रभावशाली वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सबका कल्याण के दृष्टिकोण और मानवता के लिए AI के वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप होगा। समिट वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा, जिससे कि शासन, नवाचार और सतत विकास में एआई के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित किया जा सके और भविष्य की दिशा तय की जा सके।
So the India AI Impact Summit 2026, this is guided by three foundational pillars, which we just told you, referred to as sutras, which articulate the core principles guiding global cooperation on artificial intelligence. Let's find out about them in a little detail. So the first pillar is people, promoting human-centric AI that safeguards rights, enhances access to services, builds trust, and ensures equitable benefits across societies. Second one now, that's planet, advancing environmentally sustainable AI by encouraging energy-efficient systems, responsible resource use, and applications that support climate action and environmental resilience. Now, the third sutra, it is progress, enabling inclusive economic and technological advancement through innovation, capacity building, and the use of artificial intelligence to drive productivity and development outcomes and growth.
शगुन, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि समिट में होने वाली चर्चाएं अलग अलग चक्रों या वर्किंग ग्रुप्स के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। हर चक्र एआई के प्रभाव के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान देता है और तय किए गए सूत्रों को नीतियों और वास्तविक जीवन में लागू होने वाले ठोस कदमों में बदलने पर काम करता है। इन चक्रों का उद्देश्य एआई के सामाजिक प्रभावों पर देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अब इस सात चक्रों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। पहला है मानव पूंजी, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन। तीसरा है सुरक्षित और भरोसेमंद एआई। वहीं चौथा है विज्ञान। पांचवा लचीलापन, नवाचार और दक्षता। छठवां है एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण। और आखिरी चक्र है आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए।
Right, Vaishnavi, and overall, India's rapid adoption of artificial intelligence, it is opening new pathways for innovation, inclusive growth across various sectors. And as the technology evolves, India is advancing workforce readiness for an AI-driven economy, while also ensuring broad participation across regions and socio-economic groups. And we were also telling you about working groups. The Human Capital Thematic Working Group focuses on strengthening these efforts by shaping an equitable artificial intelligence skilling ecosystem that enables smooth workforce transitions and also thereby equips citizens with capabilities for emerging roles.
बिल्कुल श्रोताओं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एआई कौशल के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। वर्ष 2016 से अब तक भारत में एआई टैलेंट की संख्या में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है।
How great.
स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत लगभग 33% की नियुक्ति वृद्धि के साथ वैश्विक एआई टैलेंट की भर्ती में सबसे आगे है और ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में भी शीर्ष 3 देशों में शामिल है।
And artificial intelligence, Vaishnavi, if you think about it, it is set to transform India's technology services sector by redefining the workforce with the potential to create millions of jobs over the next few years. And that's the future. Government-led investments in skilling, research, global exposure are strengthening domestic capabilities while aligning them with international requirements as well. And these efforts position India as a dependable and inclusive partner in advancing global cooperation on artificial intelligence. Mm-hmm. And the AI, India AI Impact Summit 2026, the first one in Global South, will strengthen India's role as a key platform for shaping the global AI agenda. So this is anchored in the seven chakras. We explained that to you. Three sutras of people, planet, progress. The summit advances a development-oriented framework for artificial intelligence. And the summit, it marks a transition from dialogue to delivery, the real execution, and reinforcing India's commitment to responsible, inclusive, and development-focused AI pathways.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
And we are beginning with
Vijayapuram. परमवीर सागर यात्रा अभियान के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एनसीसी कैडेट भारतीय नौसेना के जहाज पर सवार होकर परमवीर चक्र की विजेताओं के नाम पर नामित 21 निर्जन द्वीपों की यात्रा की। यात्रा के दौरान कैडेटों ने इन द्वीपों की मिट्टी एकत्र कर परमवीर माटी कलश प्रधानमंत्री को भेंट की। एक रिपोर्ट।
परमवीर सागर यात्रा एक अनूठी नौकायन पहल है जिसमें अंडमान निकोबार के एनसीसी कैडेट्स भारतीय नौसेना के जहाज पर 21 निर्जन द्वीपों का भ्रमण करते हैं और देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह यात्रा 6 जनवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक फ्लैग पॉइंट से 20 एनसीसी कैडेट्स की मुख्य टीम द्वारा अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ एवं वाइस एडमिरल अजय कोचर की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर शुरू हुई थी। नई दिल्ली में परमवीर सागर यात्रा का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें अंडमान निकोबार के एनसीसी कैडेट्स ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर 21 निर्जन द्वीपों से एकत्रित मिट्टी से भरा पवित्र माटी कलश जिन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर नामांकित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया। यह समारोह राष्ट्रीय स्तर की इस महत्वपूर्ण पहल के सफल समापन का प्रतीक था जो देश के बहादुर सैनिक के सर्वोच्च साहस और बलिदान को सम्मानित करता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से मैं तरन्नुम मोहम्मद।
नाउ वील हेड टू गैंगटॉक। सुकांत दास, अ रेनाउंड बैडमिंटन कोच फ्रॉम सिक्किम एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ सिक्किम, हैज बीन नॉमिनेटेड एज इंडियन टीम मैनेजर फॉर 2 मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। लेट्स फाइंड आउट मोर डिटेल्स।
Sukant Das, General Secretary of the Badminton Association of Sikkim, has been nominated as Indian Team Manager for 2 upcoming internationally acclaimed tournaments, namely Dutch Junior International 2026 Grand Prix and German Junior International Grand Prix 2026. Dutch Junior International Grand Prix is scheduled to be held in the De Giro Hall, BW Haarlem, Netherlands from 25th February to 1st March 2026. On the other hand, German Junior International Grand Prix is scheduled to take place in Ludinghausen, Germany from 4th to 8th 2026. This remarkable achievement is a moment of immense pride and honor for the entire Sikkim badminton fraternity, as India's top junior shuttlers will represent India on the international stage under the capable guidance, discipline management and inspiring leadership of Mr. Sukant Das. His nomination is a strong testament to the growing recognition of Sikkim's contribution to Indian badminton at national and international levels. This is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok for Parikrama.
श्रोताओं, अब गैंगटॉक से आपको ले चलते हैं मुंबई की ओर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में हुई। उनमें पद्मश्री पुरस्कार की सूची में एक नाम ऐसा है जो महाराष्ट्र की अनूठी पहचान कहलाने वाली तमाशा लोक कला के जाने माने कलाकार रघुवीर खेड़कर का। तमाशा क्षेत्र का ये पहला पद्म पुरस्कार है। जानते हैं इस लोक कला और इस दिग्गज लोक कलाकार रघुवीर खेड़कर के बारे में हमारे मुंबई संवाददाता से।
रघुवीर खेड़कर को तमाशा की समृद्ध विरासत अपने परिवार से ही मिली। तमाशा कला के जाने माने कलाकार जोड़े तुकाराम खेड़कर और कांताबाई खेड़कर के घर 6 अगस्त 1961 को रघुवीर खेड़कर का जन्म हुआ। अपने पिता से तुलना न हो इसीलिए उन्होंने अपने लिए तमाशा की दुनिया का बड़ा ही अनूठा पात्र चुना, सोंगाड़िया। 1970 से वे इसी भूमिका को निभा रहे हैं और जी भी रहे हैं। अपनी माँ कांताबाई से तमाशा मंडली की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर उन्होंने इस लोक कला को एक नया रूप दिया। 11,000 से भी ज्यादा बार रंगमंच पर खड़े होकर अपनी कला पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। अपनी इस जीवन गाथा के बारे में रघुवीर खेड़कर ने कहा,
महाराष्ट्र की जो लोक कला है तमाशा, उसमें मैं कॉमेडी का रोल करता हूँ। वो जो हमारा नाटक होता है मराठी में कोरता दारी पुतला चोरा, उस नाटक में मैंने एक घरघड़ी की भूमिका की है। ताजीबा नाम है उसका। वो जो पुरस्कार मुझे मिला है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नए बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप मेहनत करें, एक पे काम करें, ये कला को बढ़ाने के लिए मदद करें।
सोंगाड़ा के साथ ही रघुवीर खेड़कर कुशल गायक, नर्तक, अभिनेता और समाज प्रबोधक भी है। तमाशा का सीजन ना होने पर वे गांव-गांव जाकर प्रवचन के कार्यक्रम करते हैं। समाज प्रबोधन के प्रभावी साधन के रूप में तमाशा का महत्व समझकर उन्होंने तमाशा के मंच से व्यसनों से मुक्ति, स्वच्छता, पारिवारिक विवाद और महापुरुषों की गाथाओं जैसे विषयों पर वगनाट्य प्रस्तुत किए। आज तक उन्होंने विविध विषयों पर 50 से ज्यादा वगनाट्यों की 9,000 प्रस्तुतियां की है। ऐसे दिग्गज कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना महाराष्ट्र की इस लोक कला के लिए एक बड़ी ही अहम बात है। परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं अंकिता टे।
शगुन अब खेल के मैदान की ओर रुख करते हैं और श्रोताओं को देते हैं वहां की हलचल.
राइट वैष्णवी, इन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड डिफीटेड अफगानिस्तान बाय 5 विकेट्स इन अ ग्रुप डी क्लैश इन चेन्नई टुडे. सो इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट, अफगानिस्तान स्कोर्ड 182 फॉर 6 इन स्टिपुलेटेड 20 ओवर्स विद गुलबदीन नाइब्स फैबुलस इनिंग्स ऑफ 63 रन इन जस्ट 35 बॉल्स.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि जन्मदिन.
We pay tributes to freedom fighter Kalpana Datta, who died on 8th February 1995. Datta was one of the members of Master Da Surya Sen's revolutionary group, Indian Republican Army.
In September 1931, Surya Sen entrusted her along with Preetilata Vadidhar to attack the European club in Chittagong. A week before the attack, she was arrested while carrying out a survey of the area. She went into hiding after her release on bail. On 16 February 1933, the police encircled their hiding place. During this raid, Surya Sen was arrested, but Kalpana managed to escape. Kalpana was finally arrested on 19th May 1933. In the second supplementary trial of the Chittagong Armory raid case, Kalpana was sentenced to transportation for life. She was released in 1939.
She graduated from the Calcutta University in 1940 and wrote an autobiographical book in Bengali, which was translated into English as Chittagong Armory Raiders Reminiscence. We salute the great freedom fighter.
We remember educationist and former president of India, Zakir Hussain, who was born on February 8, 1897 in Hyderabad. On Mahatma Gandhi's appeal, Zakir Hussain helped found the Muslim National University in Aligarh, which was later moved to New Delhi as Jamia Millia Islamia University and served as its vice chancellor from 1926 to 1948. The institution was intimately involved with India's struggle for freedom from the British rule and experimented with value-based education on the lines advocated by Mahatma Gandhi and Hakim Ajmal Khan. At Gandhi's invitation, he also became the chairman of the National Committee on Basic Education, established in 1937 to design a Gandhian syllabus for schools.
After independence, Hussain became the vice-chancellor of Aligarh Muslim University in 1948. He was appointed governor of Bihar state in 1957, elected vice president of India in 1962, and was elected the third president of India in 1967. Zakir Hussain died on 3rd May 1969, the first Indian president to die in office.
We also remember one of the youngest martyrs, Lakshman Bhikaji Godbole, who died on 8th February 1943. Bhikaji was born in 1927 in Akola city, Maharashtra, and was still in school when he joined the Quit India movement in August 1942. He was arrested by the British while distributing the leaflets demanding the withdrawal of British from India. He was arrested and sentenced to 6 months rigorous imprisonment. He could not bear the heavy police tortures and died in the Akola jail on 8 February 1943.
भारत की आजादी के संघर्ष में साहस और समर्पण की मिसाल रही कल्पना दत्त की आज पुण्यतिथि है. वे उन चुनिंदा महिला क्रांतिकारियों में शामिल थी जिन्होंने कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया. क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा. आजादी के बाद भी वे सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी रही. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान साहस और देशभक्ति का प्रतीक है.
Today, listeners, we are also remembering Kanhaiyalal Maniklal Munshi. We know him by his pen name, Ghanshyam Vyas, the independence Indian independence movement activist, politician, writer. So a lawyer by profession, he later turned to author and politician. He is a well-known name in Gujarati literature, founded Bhartiya Vidya Bhavan, and this is an educational trust in the year 1938. He wrote his works in three languages, Gujarati, English, as well as Hindi.
हास्य व्यंग्य और साहित्य को मंच से जोड़ने वाले प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर का आज जन्मदिन है. वे हिंदी के मंचे कवियों में एक जाना पहचाना नाम है. उनकी रचनाएं समाज की सच्चाइयों को हंसी के माध्यम से सामने लाती है. वे कवि होने के साथ साथ लेखक और शिक्षाविद भी रहे हैं.
Well, listeners, few songwriters have been able to enjoy hits across six decades. as well as the bonus of a dramatic revival of interest in their work during the later years of their careers. One such artist has been Burt Bacharach. So, with his writing partner Hal David, Bacharach launched himself into the front rank of pop songwriters with a brilliant streak of its hits for his hits in the year 1960s and beginning in 1962 with Don't Make Me Over. This was his very famous song, and he had soaked up the music of the jazz big bands and bebop. He learned from them, and there is the song. This particular song that I'm playing in the background, this has been really famous amongst his fans. Let's listen in.
आज हम याद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी को विशेष पहचान दिलाने वाली गायिका शुभा गुट्टू को। 8 फरवरी 1925 को जन्मी शुभा गुट्टू ने ठुमरी गायन को सिर्फ एक शैली नहीं बल्कि एहसास बना दिया। उनकी आवाज में बनारस की मिट्टी की खुशबू, विरह का दर्द और प्रेम की कोमलता साफ झलकती थी। वे ठुमरी के साथ साथ दादरा और भजनों को की भी सिद्ध गायिका थी। उनकी गायकी में भावनाओं की सादगी थी जो सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचती थी। अब आइए शब्दों से आगे बढ़ते हुए सुरों की उस दुनिया में चलते हैं जहां भावनाएं आवाज बन जाती हैं। सुनते हैं ठुमरी की महान गायिका शुभा गुट्टू की मधुर आवाज में एक खूबसूरत सी रचना।
रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग
how beautiful. Listeners, before telling you about our next personality, well, a very prominent singer, you have to listen to this, listeners.
Tum itna jo muskura rahi ho, tum itna jo muskura rahi ho, kya gham hai jisko छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
सरल सुर, गहरे एहसास और शब्दों की सच्चाई, जगजीत सिंह की गजलों की यही खूबसूरती थी। आज हम याद कर रहे हैं गजल को महफिलों से निकाल कर आम श्रोताओं तक पहुंचाने वाले कलाकार जगजीत सिंह जी को।
Well, yes, he started his journey Vaishnavi as a singer for advertising jingles and struggled to make a living. So this voice then later taught gazals to breathe in the language of the heart where every word lingered like a timeless prayer.
जी, उनकी गायकी में बनावट नहीं बल्कि सच्चे एहसास और गहराई होती थी। उन्होंने पारंपरिक गजल को आधुनिक संगीत से जोड़ा जिससे नई पीढ़ी भी इससे जुड़ सके।
Well, this gazal, which we'll make you listen to, listeners, now this has been really special and very close to my heart. Even we have enjoyed listening to it so much. Let's listen in.
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती।
Interest in singing intensified through his college days and encouraged by the vice chancellor of his university.
जगजीत सिंह को हम गजलों से जोड़ते हैं लेकिन भजन और दूसरे गीतों में भी उनकी आवाज उतनी ही असरदार रही। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह का एक और प्रसिद्ध गीत। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।